पांच रबीउल आखिर 1426 हिजरी मुताबिक 13 मई सन 2005 ईस्वी 28वां पारा सूरह हश्र शरीफ आयत नंबर 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ये जो लिखा हुआ है इसमें ला देख ला में अलिफ के ऊपर एक गोल बनाया हुआ है छोटा सा नुकता सर्कल ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा ये असल में है ला अंतुम है ला अंतुम में ला अंतुम ला अंतुम अशद रहबतन फी सुदूरहिम मिन अल्लाह ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إنسان اكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها خالدين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
لا يستوي
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ بات واضح کی جا چکی تھی گزشتہ درس میں کہ سورہ حشر شریف کا پس منظر بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تاریخی پس منظر کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے دو قبیلے بنو قریظہ بنو نضیر یا نضیر جو یہودی النسل تھے ان لوگوں نے मदीने मुनव्वरा को हुजूर की हिजरत से पहले अपने कब्जे में रखा था, और यमन के वो जो कबीले औस और खजरज जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजरीन का भाई बना दिया था, वो इनके यहाँ काम करते, नौकरी चाकरी करते और यहूदियों से सूदी पर रकम लेते, और वो यहूदी इनकी चमड़ियां उधेड़ते, किस्त पर किस्त, सूद दर सूद तंग कर दिया था। जब हुजूर तशरीफ ले गए तो हुजूर ने इनसे पहले किताबी होने की हैसियत से वादा फरमाया कि भाई देखो, हम तुमसे और तुम हमसे मुआहदा कर लो कि हम एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक शहर में रहते हैं, कोऑपरेशन करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें, यही अच्छा है। और बैरूनी ताकत अगर कोई हमला करना चाहती है तो हम मिल करके दिफा करें, डिफेंस करें उसका। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम मुआहदा कर रहे हैं, ना हम आपके साथ किसी से लड़ेंगे ना आपके खिलाफ किसी से लड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो अच्छा, अच्छी बात, पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, बस लोग खुशी के साथ रहें, वायदा हो गया। मगर हुआ क्या, इस्लाम नजरियाती तौर पर उनके जो एक्टिविटीज थी उसके साथ मुत्तफिक नहीं हो सका। अब मसलन सूदी कारोबार, तो सूदी कारोबार तो इस्लाम ने पहले आकर के साथ मुहर लगा दी कि ये बंद, सूदी कारोबार बंद। सूद का गुजर भी इस्लामी दुनिया में नहीं, इस्लाम के उसूल के एतबार से। नंबर दो, उनकी सूरत हाल ये थी कि वो मोरल वैल्यूज के एतबार से इतने घटिया थे कि मुसलमानों की औरतों के नाम ले लेकर के इश्किया अशआर लिखते और उनको आम रास्ते पर पढ़ा करते थे, इस पर भी पाबंदी। और एक दूसरे के साथ लड़ाना बुझाना कि इसको माम इससे ही मिलकर के, इसकी वाले उससे मिलकर के, उसकी वाले उसको उसके खिलाफ, उसको उसके खिलाफ लड़ा दिया दोनों को, इस्लाम इसके भी खिलाफ। तो यानी अखलाकी तौर पर वो बिल्कुल घटिया अंदाज उन्होंने अख्तियार किया था। कब तक चलती ये बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग्नोर करते थे कि भाई मुआहदा हुआ है, निभाओ की सूरत से ताकि मामला खराब न होने पाए और लोग खुशी खुशी रहें, बस इकॉनमी इनके हाथ में थी पूरे। तो आदमी हर चीज को तो बर्दाश्त कर सकता है, आज भी यही मामला है, हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद जहां आदमी के की इकॉनमी और उसके इक्तसादियात के ऊपर कोई जरब लगती है तो फिर वो आपका दोस्त ना, आपका भाई ना, आपका अपना वो दुश्मन हो जाता है। आज भी यही है, बड़े से बड़े दोस्त को देखो, जब मामला लेन देन का आता है ना, वहीं से ठनती है, उसके बाद दूरियां होनी शुरू हो जाती है, यही है। तो जब उनकी इक्तसादी पॉलिसी को नुकसान पहुंचा और वो ये कि साहब हमारे सूदी कारोबार बंद हो गए, तो हम तो डाउन होते चले जाएंगे, तो जमीन पर आ जाएंगे, अंदर अंदर साजिशें शुरू कर दी। मदीना मुनव्वरा में एक गरोह और भी था मुनाफिकीन का, उसका सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई और कुछ बड़े बड़े मुनाफिकीन थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमई वो अंदर अंदर इतना दुश्मन इस्लाम का कि वो तो चाहता था कि इस्लाम की जड़ें उखाड़ के फेंक दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मौका मिले जलील करे, माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी में लगा रहता था। इसने यहूदियों के साथ साजिश की कि हम तुम दोनों मिलकर के इन साइड इनको मारें, और मक्के वाले तो बाहर से आकर के चढ़ाई कर ही रहे हैं, इस दो दो चक्कियों के पार्ट देंगे। चुनांचे हुजूर को शहीद करने की कितनी नापाक साजिशें की गई, बताया इससे पहले मैंने।
بنو قریظہ ہی میں یہودیوں کے محلے میں، پہلے یہ یہودی مدینے کے بیچ میں رہتے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ یار مدینے کے بیچ میں رہ کر کے معاملہ بن نہیں رہا ہے، تو یہ شفٹ ہو گئے آؤٹ آف مدینہ کلوز، صبر میں چلے گئے. وہاں باقاعدہ انہوں نے اپنے مکانات بنائے، قلعے بنائے، بہت ہی اسٹرانگ ہو گئے. اسی لیے وہاں لکھا ہوا فی قرآن محصنہ، بہت ہی مضبوط قسم کی جگہ انہوں نے بنا ڈالی اور وہاں اپنا کاروبار کرتے تھے. حضور ایک مرتبہ ایک مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے، ان لوگوں نے بلایا کہ ایک معاملہ ہو چکا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، دیت کا مسئلہ تھا، کیا کر کے فیصلہ کر دیجئے. حضور دیوار کے پاس بیٹھا دیا گیا حضور کو، مقصد تھا کہ شہید کر دیں گے. ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ اوپر سے یہ بڑا والا پتھر لڑکا دو تاکہ حضور پر گرے، حضور ہی مر جائے. معاذ اللہ، خاکم بدہن، استغفر اللہ. جبریل امین آ کر کے ہٹا دیا، اڑ جائیے یہاں سے. سازش کی گئی، دعوت بلائی کھانے کے لیے، کھانے میں بہت ہی خوفناک زہر ملا دیا. بوٹیاں بولنے لگی، یا رسول اللہ ہم کو نہ کھائیے، ہم میں بڑا خوفناک زہر ملا ہوا ہے. حضور نے صرف چکھا تھا، ہٹا دیا. تو اس طرح سے مسلسل یہ زیادتیاں کرتے رہے. مسلمان اگر ان کے محلے سے کوئی گزرتا تو اس کو پکڑ کر مارتے، مسلمانوں کی کھیتیاں تباہ کر دیتے، ان کی جائیدادیں تباہ کر دیتے. تو آئے دن کا یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر وہاں سے بدر کر دیا، نکال دیا خیبر. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور نصرانیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، کہہ دیا. وہاں بھی یہ خاموش نہ رہے، وہاں بھی یہ مدینہ مکہ مکرمہ کے قریش جو کفار و مشرکین تھے، اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، ان سے ان کے تعلقات اور اسلام کے خلاف سازشیں مسلسل ہوتی رہتی. تو پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں وہاں سے ان کو ہٹا کر کے پھر ملک شام میں ملک بدل کیا. یہ اس طرح تاریخی پس منظر. سر دست جو رکو چل رہا ہے اس میں ایک گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ منافقوں نے، جس کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا اور چند اور بڑے بڑے منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن نبتل، رفاع ابن زید اور رافعہ ابن تابوت، اوس ابن قیضی، یہ سب کے سب جو ہے بڑے بڑے منافقین تھے، ہائپوکریٹس تھے. ان لوگوں نے یہودیوں کو، ابھی حضور نے ان کو نکالا نہیں، نکالنے سے پہلے جب یہ مدینے کے بیچ میں رہتے تھے تو ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم ان سے لڑائی کی ٹھان لو، لڑو ان سے، مسلمانوں سے، ہم تمہارے ساتھ فلی کوآپریشن کریں گے، اور اگر ان لوگوں نے تم کو نکالا نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ منافقوں نے. اللہ جل شانہ نے پیغام دیا، وحی آئی، اسے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں منافقین نا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تم کو آگے بڑھا دیں گے، یہودیوں کو آگے بڑھا دیں گے، پیچھے اڑ جائیں گے اپنے آپ. اس لیے کہ ان کی تو، منافقوں کی تو ہسٹری یہی تھی، ان کا طریقہ یہی تھا، منہ پر کچھ پیچھے کچھ. منہ پہ جاؤ تو ایسی لگاؤ کہ صاحب لگتا ہے کہ سب سے بڑا عاشق اظہار یہی، اور پیچھے جاؤ گا تو ایسا خنجر مارا کہ صاحب پیٹ سے مارا، سینے جھاگ نکل گیا. جنگ بہود میں یہی دیکھا گیا، بدر میں دیکھا گیا، اور دیگر اور غزوات میں دیکھا گیا. تو ان کا تو حال ہی یہی تھا، تو چڑھا دیا، خوب کس کے چڑھا دیا، بہت کس کے چڑھا دیا یہودیوں کو. وہ سب تیار ہو گئے. اب جب تیار ہو گئے، ٹھن گئی، تو جب ان کو نکال دیا گیا تو یہ نہیں نکلے، رکے رہ گئے. اسی کا ذکر پورے رکو میں چھایا ہوا ہے. اس سے پہلی والی آیت کریمہ جو گزری ہے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، آیت نمبر 10، उसके ताल्लुक से इमाम कुर्तबी ने एक बहुत अच्छी बात बताई ये कि उम्मत मुसलमा तीन गरोह में बटी हुई है, तीन तीन गरोह इसके हैं। नंबर एक फरमाते हैं कि अल मुहाजिरून, जो हिजरत करके तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा से मदीने मनव्वरा, एक पार्टी ये है, मुसलमानों की बात हो रही है। नंबर दो वल्लदीना तबव्वउ दार वल ईमान, वो जो ईमान और दार यानी घर को तलाश करते हैं, अहले मदीना। और नंबर तीन बतलाया वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए। इसमें कयामत तक के सारे मुसलमान शामिल, तीन गरोह हुई। एक तो ये जो हिजरत फरमा करके मक्का मुकर्रमा से मदीने मनव्वर आए, नंबर दो जो मदीने में थे अंसार, वो मुहाजिरीन भी अंसार, दो गरोह हो गए। तीसरा वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए, इनके बाद मुहाजिरीन अंसार के बाद जो आए, सहाबा के बाद आए। बाद उलमा ने कहा कि इससे मुराद ताबईन है, और एक अच्छा कौल ये नकल किया गया है कि उम्मत मुस्लिमा कयामत तक जितने आने वाले हैं ये सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि वो जो हमारे भाई हैं, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं हैं, और उन्होंने फरमाया नहीं तुम मेरे सहाबा हो, तुम्हारे बाद जो आएंगे जिन्होंने मुझको देखा नहीं है, अनदेखा मेरा कलमा पढ़ेंगे, मुझको मुझ पर ईमान लाएंगे, मेरी इत्तबा करेंगे, मुझको फॉलो करेंगे, वो मेरे भाई हैं। यानी अलअख फिल इस्लाम, अलअख फिल इस्लाम, इस्लामी भाई। इस हदीस से ये ध्यान के अंदर बात नहीं लानी चाहिए कि हर शख्स को ये अथॉरिटी मिल गई कि वो भी हुजूर को अपना भाई कहना शुरू कर दे। ये हुजूर की नवाजिश है, हुजूर का एहसान है, हुजूर का करम है कि उन्होंने सहाबे कराम के बाद में आने वाले मुसलमान क्यामत तक को अपनी नवाजिश और अपनी बारगाह में निस्बत करते हुए अपना भाई फिल इस्लाम कह दिया, इस्लामी भाई कह दिया। ये एजाज हुजूर का था फरमाया हुआ, लिहाजा किसी मुसलमान को हासिल नहीं क्योंकि साहब मेरे बड़े भाई हो, ये बहुत ही गलत किस्म का जुमला होगा अगर कोई शख्स इधर से हुजूर की तरफ ये निस्बत करे कि वो मेरे बड़े भाई है, ये जाहिलाना होगा। तो इमाम कुर्तबी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जरा दिमाग लगा के सुन ले तो अभी ईमान रोशन हो जाएगा। कहते हैं कि फजहद अल्लाह तखरुजा मिन हादिल मनाजिल, तो तीन गरोह हो गए हैं, एक तो मुहाजिरीन और एक वो जो अल्लदीना तबवुद्दार अल ईमान, जो मदीना मनवरा में रह करके ईमान और घर को तलाश करते हैं, और तीसरे वल्लदीना जाओ मिन बादी, जो उनके बाद आने वाले। तीन गरोह हुए, एक सुनने वाले इन तीनों गरोहों से अलग ना होना, या तो मुहाजिर बन करके रहो या अल्लदीना तबवुद्दार अल ईमान, जो लोग मदीना मनवरा में अपने ईमान को तलाश कर रहे हैं, अपने घरों को तलाश कर रहे हैं, वो बन करके रहो। अगर ये दोनों ही बन सकते हो तो फिर वल्लदीना जाओ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आने वाले हैं, तो उसमें शामिल हो जाओ। फरमाते हैं बाद लोगों ने कहा है कुन शमसन फैलम स्तती फकुन कामारा फैलम स्तती फकुन कौकबन मुदिया फैलम स्तती फकुन कौकबन सगीरा वमिन जहति नूर ला तनक़ति। कहते हैं कि अगर हो सके तो सूरज बन करके रहो, अगर हो सके तो सूरज बन करके रहो, अगर सूरज बनने की सलाहियत नहीं है तो चांद ही बन करके रहो, और अगर चांद बनने की सलाहियत नहीं है तो चमकने वाले रोशन सितारे की तरह से रहो। तो अगर ये भी नहीं बन सकते हो तो कम से कम छोटा सितारा ही बन जा। और मिन जहते नूर लातन का, जैसे कि नूर का जो सिलसिला है मुनक़ता नहीं होगा अगर छोटा सितारा भी बन गया, जब भी नूर का सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका? शम्स अल मुहाजिरून, जो हिजरत फरमा करके आए वो शम्स है। जिन लोगों ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की वो कौन लोग हैं? वो शम्स है, वो सूरज है। और जिन लोगों ने मदीने मनव्वरा में रह करके उनकी मदद की वो कौन लोग हैं? वो चांद है। और जो उनके बाद आए ताबईन, वो सितारे हैं, और हम लोग छोटा सितारा। हम लोग छोटा सितारा, कम से कम इतना तो है कि छोटा सितारा भी चमकता तो है, रोशनी देता तो है, तो नूर का एक सिलसिला, नूर का एक रिश्ता हमारा हुजूर से, सहाबा से, ताबईन से बाकी ना मिला। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन, यानी हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हैं हजरत मोहम्मद बाकिर ग़ालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनसे पूछा गया कि इराक के कुछ लोग आपके पास आए, अन्ना नफर में इराक जाओ इलैह फसब्बू अबा बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तुम उस्मान। इन लोगों ने आकर के, इराकियों ने, पहले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर सैयदना उस्मान गनी की शान में गुस्ताखियाँ की, उनको गालियाँ दी तो, और मतलब कि काफ़ी बेहूदगी की। तो हजरत मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, आ मिनल मुहाजिरिन अव्वलीन अंतुम, तवज्जो चाहता हूँ, क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम में हिजरत की? तो कहने लगे नहीं। तो फिर फरमाया, आ फमिनल लदीना तबवउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, क्या तुम उन लोगों में से हो कि जिन लोगों ने मदीने में आकर के ईमान और दार यानी घर को तलाश किया, यानी अंसार में से हो तुम लोग? कहा कि नहीं। فقال قد تبرأت من هذه الفريقين انا اشهد انكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا, کہ مجھے افسوس ہے تم لوگوں کے اوپر کہ تم لوگ ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہو, نہ مہاجرین میں سے ہو نہ انصار میں سے ہو, تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اس میں سے بھی نہیں ہو. تیسرا گروہ ہے وہ کون ہے؟ والذین جاؤ من بعدہم, وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور ان لوگوں نے رب کریم سے دعا کی, اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے مسلمان بھائیوں کو بخش دے, ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, تو ان میں سے بھی نہیں ہے, تو مسلمان ہی نسبت. یہ اعزاز ہے الحمدللہ, ہمیں یہ نسبت ہے, اور اس نسبت پر ہمیں الحمدللہ رب العالمین ناز بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے جلیلہ سے, اولیاء کامرین کے وسیلے جلیلہ سے, علماء حق کے وسیلے جلیلہ سے کم از کم ہم اس گروہ میں ہیں, تو چاہے چھوٹا ستارے ہی کی شکل میں. بات سمجھیں, یہ امام قرطبی اس کو نقل کیا ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو امام قرطبی, یہ میرے خیال میں یہ چوتھی صدی ہجری یا پانچویں صدی ہجری کے ہیں, جس وقت اندلس کے اوپر اور اسپین کے اوپر وہ مسلمانوں کی حکومت تھی, یہ اسی زمانے کے ہیں, کیونکہ یہ اندلسی ہیں. اندلس جو اسپین کا اختیار تھا نا, وہیں کے رہنے والے ہیں, اس زمانے کے ہیں. ہمارا مسلک جو ہے نا, جو ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں سنت و جماعت, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بھی کرتے ہیں نا, جتنی بھی ہیں, یہ سب ہمارے بزرگوں سے ہمیں روایتاً اور ٹریڈیشنل طریقے پر ملی, اور ہمارے بزرگوں نے اس کو تلاش کیا ہے. بس یہ کہ آدمی کی نگاہ اس کو تلاش کرے, انشاءاللہ کہیں نہ کہیں مل جائے گی. یہ اندھے ہیں وہ لوگ جو ہماری روایتوں کو غلط طریقے سے دیکھتے ہیں, اور چونکہ روایت ان کو پہنچتی تو انکار کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, اگر نہیں معلوم ہے تو انکار نہ کرو, یہ بول دو کہ بھائی میری نگاہ سے یہ بات نہیں گزری ہے, لہٰذا میں اس کے بارے میں نہ انکار کر سکتا ہوں نہ اقرار کر سکتا ہوں. اتنا اگر کسی کے پاس گٹس ہے کہ وہ 52 کتابیں, 53 کتابیں یا 55 کتابیں جو حدیث پاک کی لکھی گئی ہیں, اور سب کو اپنی مطالعہ کر کے دماغ میں رکھ چکا ہے, قرآن کا حافظ ہے, ساری کتابیں حدیث کا حافظ ہے, اب وہ انکار کرے تو بھائی اس کے لیے جائز ہے, اس بنیاد پر کہ وہ بہت بڑا عظیم حافظ حدیث ہے. وہ ایسا کوئی دنیا میں سب ہے نہیں, لہٰذا انکار کرنے والے بہت ہی زیادہ غلط راستے پر ہیں. اے محبوب, الم ترى الذين نافقوا, کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے, لیکن اخرجتم لنخرجن معكم, اگر تم نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے مدینے سے, تمہیں جہاں ملک بدر کیا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. اچھا, ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے, ہمارا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے, لہذا تمہارے بارے میں تم کسی کی بات سننے والے نہیں. اب دوسرا ہے کون, تیسرا کون ہے؟ منافقین, یہود, اور تیسری طاقت مسلمانوں کی, ये तो गठजोड़ बन गया मुनाफिकों का और यहूदियों का। अब तीसरी किसी की बात नहीं मानेंगे, किसकी बात? मुसलमानों की बात नहीं मानेंगे, लिहाजा हम तुम्हारे साथ फुली कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। वैन को तिल तुम लनन सोरन न को, और अगर तुमसे लड़ाई हुई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मुनाफिकीन बोल रहे हैं यहूदियों से, इतनी बात हो गई। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुना इन्नहुम लकाज़िबून, मगर अल्लाह गवाही दे रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं। ऐसा अगर मुसलमानों तुम्हारे, ये यहूदियों तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आई, तो ये मुनाफिकीन जो तुम्हारे साथ अभी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम निकाल दिए जाओगे या मदीने में बैठे रहेंगे चुपके। हुआ यही, लैन उखरजू ला यखरजू ना मा हो, वला इन कुतलू ला यंसरू ना हो, वला इन नसरूहुम लै वल्लुन अदबार थुम ला यंसरून। अगर वो निकाले गए ये यहूद, तो ये उनके साथ निकलेंगे कौन? मुनाफिक उनके साथ नहीं निकलेंगे। और अगर यहूदियों से लड़ाई हुई तो ये मुनाफिक यहूदियों की मदद भी नहीं करेंगे, और उनकी अगर मदद की भी तो जहां मुसलमानों के मुकाबले में आएंगे तो पीठ फेर कर भागेंगे, फिर मदद ना पाएंगे। यानी अभी ये वाकया हुआ नहीं है, वाकये से पहले अल्लाह जल्ल शानहू ने वही के जरिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि इससे हुजूर के गैब का पता चलता है कि अल्लाह जल्ल शानहू हुजूर को गैब का इल्म अता फरमाता है, कि हुजूर गैब की बातें, मुस्तकबिल की बातें, फ्यूचर की बातें बता देते हैं, अल्लाह ताला बता देता है। हुआ यही कि जब इनकी सरकशियां बढ़ गई, उन्होंने नाक में दम कर दिया मुसलमानों का, तो मजबूरन फिर इन्होंने, क्योंकि खुद मुआहदे के खिलाफ वर्जी की थी, मुआहदा खुद इन्होंने तोड़ा था, जो मुआहदा इनसे हुआ था शुरू में उसके खिलाफ वर्जी इन्हीं की तरफ से हुई, और बार बार हुई, हुजूर ने बार बार इग्नोर किया, बचते रहे। जब बात इंतहा को पहुंच गई, हुजूर के कत्ल की साजिश, मुसलमानों की इज्जत आबरू के ऊपर हमले होने लगे, तब फिर मजबूरन इनको निकाला गया यहां से। जब निकाला गया इनको, घरों में दबके बैठे रहे, कोई बाहर नहीं निकला, कोई मुनाफिक बाहर नहीं निकला, निकाल दिए गए अब्दुल्लाह इब्ने वगैरह सब के सब। لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، बेशक इनके दिलों में अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा डर है, इसलिए कि वो ना समझ लोग हैं। ये मुसलमानों, तुम्हारा खौफ इनके दिल पर इतना सवार हो चुका है। देखें वो जुबला जो कभी कभी आदमी बोलता है, नहीं यार तो लगता है जैसे अल्लाह से फला से ज्यादा डर रहा है, अल्लाह से बनिस्बत अल्लाह के फला ज्यादा डर रहा है। वही जुमला यहां इस्तेमाल किया कुरान ने कि अल्लाह से ज्यादा ये मुसलमानों, तुम्हारा डर इनके दिलों के अंदर बैठा हुआ है, मुनाफिकों के अंदर, यहूदियों के अंदर, इसलिए ये तुम्हारे मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ना समझ लोग हैं। अगर इनको अकल होती तो ये देख लेते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इकोनॉमिकल रिवलेशन लाने वाले हैं, इनकलाब, मुआशियात का इनकलाब ला रहे हैं, कि मदीने मुनव्वरा की इकॉनमी इतनी डाउन थी, फतूहात की बुनियाद पर, वो मदीना जहां घरों में खाने की चीजें नहीं होती थी, फतूहात की बुनियाद पर अल्लाह अकबर, एक एक सहाबी की सूरत हाल ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू के हबीब के कदम पाक की बरकात से कई कई हजार दीनार उनके यहाँ घरों में ऐसे ही पड़े रहा करते, ऐसे ही पड़े रहे। अब अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मस्जिद नबवी शरीफ में माल गनीमत रखा हुआ है, किस्मत खुल गई अहले मदीना की, माल गनीमत रखा हुआ है, हुजूर ने तकसीम फरमा दिया सबको, फिर देखा अभी बाकी बचा हुआ, दोबारा फिर तकसीम फरमाया, फिर देखा अभी बाकी बचा हुआ, तीन बार तकसीम फरमा, तीसरी बार तकसीम फरमा, लोग यानी बाद सहाबे कराम कहते थे कि अल्लाह जल्ल शानहू का एहसान, हुजूर के कदम पाक की बरकत, इस्लाम ने हमें मुफलिस थे अमीर बना दिया, गरीब थे अमीर बना दिया है, घरों में खाने को नहीं होता था, अब सूरत हाल ये है कि एक एक आदमी के घर में कई कई हजार दीनार पड़ा रहता है, स्टोर रखा रहता है, क्योंकि उस जमाने बैंक सिस्टम था नहीं, जाके बैंक बैलेंस करता, घरों में पड़े हुए। एक एक आदमी के पास तीन तीन चार चार पांच पांच हजार दीनार घरों में ऐसे पड़े रहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये एजाज। लेकिन इसके बावजूद वो लोग समझ रहे थे कि बर्बादी है, नुकसान है। तो अगर अक्ल होती तो उस अक्ल का फायदा हासिल करते कि नहीं, खामोशी के साथ पड़े रहो, पीस और अमन माहौल में हो, लोग मिल मिला करके दूसरे के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें, बैरूनी ताकत का मुकाबला किया जाए, हमारा ही फायदा है। अगर बाहरी ताकत आकर के हमला करेगी और खुद हमारी इकॉनमी इससे डैमेज हो तो भूखे हमारे बच्चे मरेंगे, दूसरे के बच्चे थोड़ी मरेंगे। मगर उनकी अकल नहीं। कुरान कह रहा है कि لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر, ये सब मिलकर भी तुमसे न लड़ेंगे, हाँ, किलाबंद शहरों में या धुस्सों के पीछे। क्या मतलब? ये तुम्हारे सामने आमने सामने आकर के तो नहीं लड़ सकते हैं, ना मुनाफिकीन ना यहूदी। ये साजिशी टोला है, ये कर सकता है कि अपने किलों में महसूर हो जाए, बंद हो जाए, वहीं से तीर फेंकें, वहीं से पत्थर फेंक करके तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचाएं, या ये कि किसी दीवार के पीछे छुप करके तुम्हारे ऊपर हमला कर दें, ये कर सकते हैं। ये कि तुम्हारे सामने आकर के आमने सामने जंग करें, तो अब इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसलिए कि जंगे बद्र में देख चुके हैं। मामला क्या था असल में जंगे बद्र में? जब कुफार और मुशरिकीन को शिकस्त हुई तो उस वक्त ये डर गए थोड़ा, फिर जब जंगे उहुद में मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो फिर ये शेर बन गए, ये शेर बन गए। अरे यार, इनको मारना तो बहुत आसान। चुनांचे यही वजह थी कि इनका एक डेलीगेशन, यहूदियों का एक डेलीगेशन मक्के मुकर्रमा गया। मक्के मुकर्रमा जाने के बाद वहां के कुफारों मुशरिकीन से गिड़गिड़ाया कि ऐसा है, ये देखो, इन लोगों ने इतना जुल्म किया है कि तुम्हारे बड़े बड़े लोगों को कत्ल कर दिया, हम तुम्हारे पास आए हुए हैं कि तुम हमारे स्वाद का ऑपरेशन करो, और तुम बाहर से मारो, हम अंदर से मार करके इस्लाम की तबाही बचा दी। मुशरिकीन मक्का ने एक बात रखी कि देखो भाई, बात ये है, तुम भी अहले किताब हो, तुम्हारा भी कहना है कि तुम्हारे पैगंबरों पर किताब उतरी, और ये भी कहते हैं कि इनके पैगंबर पर किताब उतर रही है, लिहाजा हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन अभी नहीं कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमें धोखे से बुला करके खुद आपस में एक दूसरे से मिल जाओ और हमें वहां कत्ल करना शुरू कर दो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब क्या हो भाई, तो क्या किया जाए? अगर तुम हमारी मदद चाहते हो, मुशरिकीन मक्के के मुशरिक बोल रहे हैं, कुफार, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो ये हमारे बुत हैं, इनको पहले सजदा करो। अच्छा भाई, ठीक है, सजदा कर लिया, हाँ, अब तुम्हारे साथ कोऑपरेशन होगा। इसी को सूरह निसा शरीफ की आयत करीमा में फरमाया गया, अलम तगाइल लदीन उतू नसीबा मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्त तागूत व यकूलून लिल्लदीन कफरू हाउलाए यहदा मिनल लदीन आमनू सबीला। आयत नंबर 51 बयान फरमाया, क्या तुमने वो न देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, ईमान लाते हैं बुत और शैतान और पर और काफिरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों से ज्यादा राह पर हैं, ये मुशरिकीन मुसलमानों से ज्यादा हिदायत पर हैं, बुतों को सजदा कर लिया, तब जा करके इनके साथ वायदा तय हुआ और ये बात तय पाई कि तुम जा करके अंदर से उनको मारो, बाहर से हमारी रहे मारने के लिए। उन्हें नहीं मालूम था असल मामला कहां बिगड़ा है। बिगड़ा ये है कि अगर उन लोगों ने हुजूर की हैसियत और शख्सियत को समझ लिया होगा तो ये इतनी बड़ी बात नहीं करते। अल्लाह के रसूल को समझ ना सके वो लोग, अगर समझे भी तो फिर उनकी जिद थी, हठधर्मियां थी, इस बुनियाद मौजदात पर मौजदात देख रहे थे। इकबाल ने लिखा है नहीं कि ये एजाज देखें कि बिलाल हबशी हबशा से, सोबिया से, सोहेब रूमी रूम से, सलमान फारसी फारस से आए, इतनी दूर से आए और अल्लाह के रसूल का फैज उनका कर्म की रहमत हासिल करें। और घर के बगल का अबू लहब चचा, सगा चचा, उस फैसले में रूप रह जाए। अंदाजा लगाए, दीवार का फर्क है इस दीवार के पीछे।